श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाताचार्य विभेन्द्र श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कुटी वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कृष्ण कोविद्री गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौरनिताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। वृंदावनी तुलसी महारानी की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद निताय गौर प्रेमानंद। श्रीमद् भागवतम से पाठ दसम स्कंद अध्याय 6 पुतनाबद्ध। इस अध्याय के आज 14 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण। पतमानः अपि तद्देह त्रिगव्युतिः अन्तरः द्रुमान् चुन्नयामास राजेन्द्र महत् आसीत् अद्भुतम्। पतमानपि तद्देह त्रिगव्युतिः अन्तरः द्रुमान् चुन्नयाम मास राजेन्द्र महदासित तत् अद्भुतम्। पतमानापि तद्देह गव्युद्यन्तरः द्रिमान् चुन्नयाम आसः राजेन्द्र महत् आसीत् तत् अद्भुतम्। पतमानः अपि तद्देह त्रिगव्युतियन्तरः द्रिमान् चुन्नयामास राजेन्द्र महत् आसीत् तत् अद्भुतम्। मत हैं। पतमान गिरते हुए भी तद्देह उसका विशाल शरीर त्रिगव्युति अंतर 12 मील के सीमा के भीतर द्रुमान सारे वृक्षों को चुनयाम आस चूर चूर कर दिए। चुनयाम आस चूर चूर कर दिए। राजेंद्र हे राजा परीक्षित महत आसित बहुत विशाल था तत् बह शरीर अद्भुतम तथा अत्यंत विचित्र। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद हे राजा परीक्षित, जब पुतना का विशाल शरीर भूमि पर गिरा तो उससे 12 मील के दायर के सारे वृक्ष चूर चूर हो गए। अपने विशाल शरीर में प्रकट होने से वह सचमुच असामान्य थी। कृपया दोहराइए, हे राजा परीक्षित, जो पुतना का विशाल शरीर भूमि पर गिरा तो उससे 12 मील के दायर के सारे वृक्ष चूर चूर हो गए। अपने विशाल शरीर में प्रकट होने से वह सचमुच असामान्य थी। तात्पर्य कृष्ण द्वारा स्तनपान किए जाने से जो पीड़ा हुई उससे मरते समय पुतना ने न केवल मकान छोड़ दिया अपितु उसने वह गांव भी छोड़ दिया और उसका विशाल शरीर चरागाह में गिर पड़ा। ओम ज्ञानातिमिदान्नस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा वयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं मनसाग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखामुकांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशदारिणी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तत्कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द शिवासादी गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। पतमान तद्देह त्रिगब्युतियंतर द्रुमा चुन्नयाम आस राजेन्द्र महत आसित तत् अद्भुतम। हे राजा परीक्षित, जब पुतना का विशाल शरीर भूमि पर गिरा तो उससे 12 माइल के दायरे के सारे वृक्ष चूर चूर हो गए। अपने विशाल शरीर में प्रकट होने से वह सचमुच असामान्य थी, सचमुच असामान्य थी, क्योंकि कितने लंबा था उसका शरीर, 12 माइल के एरिया के सारे वृक्षों को चूर चूर करते हुए वो गिर पड़ी। हैं, कैसे गिर पड़ी इसकी व्याख्या पिछले श्लोक में की गई कि निज रूपम आस्थिता, निज रूप को असली रूप को प्रकट करते हुए। हैं, और असली रूप कैसे, उसका राक्षसी रूप होता बकासुर की बहन बकी, मैंने निज रूप मास्ते अपने असली रूप को प्रकट करते हुए वो गिर पड़ा। तो असली रूप ऐसे ही था उसके, राक्षसी रूप। और वज्राहत वृत इबा पतत रूप, जैसे ही इसको तुलना सीखी गई कि जैसे ही चित्र के माने महाराज चित्र के तो ही वृत्रासुर के रूप में आए थे, वृत्रासुर के साथ में युद्ध किसकी हो रहा था, इंद्र का। तो इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा प्रहार किया इनको, वृत्रासुर वज्र के द्वारा प्रहार करने पर वृत्रासुर ने जमीन पर गिर पड़ा और दोबारा उठा नहीं। इसकी पहले भिन्न भिन्न अस्त्र के माध्यम से, अस्त्र की जो इंद्र ने अन्य अस्त्र के उसके ऊपर निक्षेप कर रहा था, कभी कभी वृत्रासुर से नीचे गिर जाता, लेकिन फिर खड़ा होकर फिर युद्ध करता था। कभी कभी नीचे भूमि से जमीन में गिर पड़ता था, लेकिन फिर उठ जाता था। लेकिन जब वज्र को निक्षेप किया गया, इंद्र ने वज्र को शरीर में निक्षेप कर दिया, तो वज्रघात से उसकी मृत्यु हो गया और उठा नहीं, उठने का शक्ति उसके पास में था नहीं। किसके पास में, वृत्रासुर के पास में। ये वज्र कैसे बना था, दधीचि मुनि के पीठ की हड्डी मेरुदंड कहते जिसको, उसे वज्र बना था। और तो वज्राघात से जब उसकी मृत्यु हो गई, इंद्र ने जो वज्र निक्षेप किया वृत्रासुर के शरीर में, अब वज्राघात के द्वारा आहत होकर वो जमीन पर जो गिर पड़ा, उससे उसको मृत्यु प्राप्त हो गया, दोबारा वो उठा नहीं। ऐसा ही पुतना जब गिर पड़ी तो दोबारा उठी नहीं हो, कैसे, वृत्रासुर जैसे दोबारा वज्राघात के द्वारा आहत होकर दोबारा उठा नहीं, इसी प्रकार ये भी दोबारा उठने की शक्ति इसके पास भी और थे नहीं। इसके पास उतना की, यदि वो इतनी विशाल राक्षसी थी और उनकी राक्षस के इतनी बड़े शरीर के सामने भगवान तो एक छोटे से नन्हा से बालक थे, छोटा से कन्हैया छोटा बालक, और उसके स्तन को पकड़कर बैठे थे उसके बक्षे स्थल में वो तो लेकिन उसकी इतनी विशाल रूप था। श्री कृष्ण लीलास्तव में सनातन गोस्वामी इस घटना को ऐसे वर्णन करते हैं, उतना कोश जनक उतना प्राण शोषण सत्कोशी व्यापी भी दाई पुतना देह पातन। पुतना को हे प्रभु सनातन गोस्वामी कहते कि आप ऐसा ही हरे कृष्ण श्री राधा गिरिधारी भगवान आप ऐसा ही पुतना के स्तन में आपने मुख लगाकर स्तनपान करने प्रारंभ किया जिसके माध्यम से उतना प्राण शोषण आपने स्तनपान के साथ साथ इसके प्राण को शोष लिया इसका उतना और इसको जोर जोर से चिल्लाने में रोने में बाध्य कर दिया। मरने के पहले बहुत जोर से चिल्लाई कौन उतना छोड़ दो मुझे छोड़ दो मेरा स्तनपान मत करो छोड़ दो कहने पर ही भगवान छोड़ने वाले नहीं थे और ऊपर से अभिनय करे तो छोटा बालक को कुछ जानते नहीं उतना क्या कह रही उसको समझ भी नहीं आया है लेकिन इनको सब समझ में आ रहा था किनको भगवान को समझ में आ रहा था कि नहीं छोटे बालक के रूप में थे उसके स्तन को पकड़े हुए थे बाहर के जो लोग क्या छोटे छोटे हाथ में कोई बच्चे ऐसे ही उतना के राक्ष मैंने स्तन को पकड़े तो उसमें क्या कष्ट होता होगा बाहर उनको कुछ पता नहीं चलता लेकिन उतना को पता लगता था क्या हो रहा है और भगवान ने इसको रोने के लिए बाध्य कर दिया। पुतना प्राण शोषण पुतना के प्राण को ऐसे शोषण कर लिए और उसके शरीर सठ क्रोश व्यापी भी छह क्रोश का अर्थ 12 माइल कितना किलोमीटर होगा नहीं माइल एक 2 किलोमीटर नहीं होता एक माइल कितने किलोमीटर होगा 1.5 किलोमीटर लगा 18 किलोमीटर है। सट क्रोशी व्यापी भी दाई पुतना देहोपातन पुतना के शरीर जो गिर पड़ा वो इतने एरिया को कवर कर लिया सट क्रोश 6 क्रोश 12 माइल या 18 किलोमीटर व्यापी एक मैंने माइल 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा होता है लगभग एक थोड़ा तो इसलिए लगभग 18-19 किलोमीटर एरिया को इतने बड़े एरिया को कवर करके वो गिर पड़ा पुतना के शरीर लेकिन जहाँ पर गिर पड़ा था ये आश्चर्य की बात कि पुतना का शरीर भगवान ने कैसे व्यवस्था किया नंद भवन में यदि वहीं यदि उसका प्राण मैंने छोड़ जाता शरीर असली रूप धारण कर गिर जाता तो क्या होता घर सब चुपचार हो जाता था मैंने नंद महाराज घर लेकिन भगवान जानते थे इसलिए इसको प्रकृत में पुतना जो चिल्ला चिल्ला के भाग के आ गए अंदर अंदर से आकाश में ऐसे कृष्ण को लेते हुए भाग रहे और गोपियां भी भाग रहे थे उसके साथ सारे गोपियां भी भाग रहे थे वो शरीर तो ऊपर से जा रहा था विमान जैसे जा रहे हैं पुतना के शरीर एक विमान के समान था आकाश में अपने ऐसे उड़ कर जा रहा था और उसकी ऊपर में कौन बैठे थे पुतना शरीर रूपी विमान के ऊपर भगवान बैठे थे छोटा सा कन्या स्तर को पकड़कर वहां बैठे थे और वो ऐसा ही पुतना अपने जा रहे थे आकाश शून्य में जाते जाते उतना कैसे गिरे ऐसा मुख नीचे करके गिरे कि ऐसा ऊपर से गिरे पीठ पे ऐसा गिरे तो ऊपर से भी वो जा रहे थे जब घर के अंदर से निकल कर जो जा रहे थे आज तक सुनने को उठने लगी तो गोपियां से हा कर सब तो भागने लगे उसकी जा रहे थे पुतना इसके सो भाग रहे थे क्योंकि कन्या उसके शरीर के ऊपर है और वो आस्ते आस्ते आगे चले गए वो मैंने नंद भवन को छोड़कर पूरा नंदगांव को अन्य एक घटना कहाँ पर हुआ था गोकुल में नंद भवन में नंद भवन को और ब्रजवासियों की जो गांव था गोकुल वो गोकुल गांव को छोड़कर थोड़ा दूर चले ने जाने लगे ऊपर से जाने लगे किसी घर के ऊपर नहीं गिरी भगवान ने ऐसे ही व्यवस्था कर दी है कि सही पुतना आगे भागते 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 कुछ दूर चले गए पूरा चरागाह में खोले मैदान में जहाँ पर सो गाय ने घास खाते थे ये एक्चुअली गाय का चरागाह होते हुए भी वहाँ पर कोई गाय नहीं था कि कोई ग्वाला भी नहीं थे ये भी बड़ा आश्चर्य की बात था नहीं तो जो भी कई लोग मर्डर हो जाता था कई जो गाय चराने वाले वो लोग का भी और कई गाय भी यदि घास खाते होंगे उस एरिया में उनका भी सुबह हो जाता था। लेकिन भगवान ने ऐसा ही व्यवस्था किया कि उस समय ये सब गाय चराने के लिए गाय को लेकर ग्वाला लोग ने दूर चले गए थे, जंगल में चले गए थे, इसलिए उस एरिया में कोई गाय भी नहीं था ना कोई ग्वाला भी था। इसलिए इस प्रकार आचार्य लोग अपना टीका लगते क्योंकि वहां पर कोई था नहीं, सो गाय चराने के लिए गाय को लेकर चले गए थे, दूर जंगल में चले गए थे। और वो जो एरिया था केवल उसमें कुछ वृक्ष थे, और वृक्ष से फलदार वृक्ष थे, हैं जैसे कल बताए थे कि जीव गोस्वामी कहते कि किसका गार्डन था, कंस का ही गार्डन था। कंस अपने पर्सनल फ्रूट गार्डन और फल का फूल और फल का बगीचा बनाकर रखा था अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, उससे और कोई एक भी फूल नहीं तोड़ सकता ना एक भी फल भी तोड़ सकता था, और सभी कंस की इंद्रिय तृप्ति के लिए था, कंस के उपभोग के लिए। तो उसी गार्डन के ऊपर भगवान ने ऐसा ही व्यवस्था ऊपर का, जैसे कोई विमान चलाने वाला कैसे होता, पायलट होता, वो जैसे मैंने निर्देशन करता है चलता है, तो इसके ऐसे ही लगता था कि पुतना के शरीर के ऊपर जो भगवान ने बैठे हुए थे कैसे काम कर रहे थे, पायलट की तरह को उसके शरीर को घुमा रहे थे, इसको चल रहा था ऐसे ही ऊपर, जैसे भगवान इसको ले जा रहे थे। पुतना अपने इच्छा में घूमने की और फिरने की घूमने की शक्ति नहीं थी, भगवान इसको गाइड करते थे। ऐसा ही तो भगवान भी कहते गीता में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया, यन्त्रारूढानि मायया। यंत्र के जैसे यंत्र चालित शरीर है, जैसे कोई बीमार कोई बस सामने खड़ा है तो उसके यंत्र को जैसे स्टीयरिंग घुमाएगा तो ऐसे ही चलेगा। भगवान तो ऐसे ही प्रत्यक्ष जीव की हृदय में बैठे हुए हैं, परमात्मा रूप में है। यदि कृष्ण किसी को कंट्रोल डायरेक्ट अपना कंट्रोल करना चाहेंगे तो वो उसका निर्देश काम नहीं चलेगा, भगवान जैसे चाहे तो वो बाध्य होकर ऐसे ही घूमने फिरने के लिए बाध्य हो जाएगा। साधारण तो कोई पिशाच या कोई किसकी यदि शरीर को कोई ग्रस्त कर लेता है तो फिर वो अपना शक्ति नहीं चलता, वो उस शरीर को पूरा काबू करके फिर अपना कार्य करता। फिर भगवान के बारे में क्या कहा जाए, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सैश्वर्य पूर्ण है, इसलिए पुतना के शरीर को उन्होंने डायरेक्ट ड्राइविंग करके ले रहे थे, विमान के समान पुतना के शरीर आकाश में था तो भगवान ने उसके ऊपर जो बैठे हुए थे स्तंभ पकड़ के वो ड्राइविंग कर, जैसे लगता कि वो शरीर को भगवान चाहते थे कि जहां पर गिरना वहीं गिरेगा, ऐसा वो पुतना की शक्ति नहीं थी कि वो अपने इच्छा से कहीं गिर पड़े, वो गांव के ऊपर गिर पड़े, किसकी तरफ है, और एक व्यक्ति था से गिरा था महाभारत युद्ध में, कौन, घटोत्कच है, भीम का पुत्र था, वो भी ऐसे बहुत बड़ा राक्षस था आया था, उसको माँ भेज दिया था जाओ पिताजी के युद्ध में मदद करो, तो आ गया था ये लोग, तो वो तो राक्षस था, उसको ये जितने भी हो तो तीर मारते थे उसको खा जाता था, फिर तोड़ के फेंक गया था, उसका कुछ होने वाला था नहीं, और इतनी विशाल स्वरूप था उसकी, विशाल स्वरूप उसके सामने, तो जो सैनिक सब थे मनुष्य सैनिक कुरुपक्ष के सब कैसे दिखाई पड़ता था, छोटा छोटा तो हंसी में उड़ा जाता था, हंसी में जितने तीर मारता चारों साइड से तीर मारता, लेकिन वो ऐसा ही उसको तोड़ के फेंक देता था बस है। और अंत में जो फिर वो दिव्यास्त्र उसको मारा, कौन मारा, कर्ण के पास में एक दिव्यास्त्र था, वो रखा था किसके लिए, उसको अर्जुन के लिए रखा था, लेकिन वो भी अब दुर्योधन देखा कि ये जो राक्षस को जो समाप्त नहीं किया जाएगा ये सबको समाप्त कर देगा, ये तो खाए सभी का ऐसे बस है सबको समाप्त कर, ये इसको क्या मैंने ये समाप्त नहीं किया जाएगा, तो फिर उन्होंने कहा कि दुर्योधन कहा कि तुम क्या कर रहे हो कर्ण, ये मरेगा नहीं, मनुष्य के अस्त्र शस्त्र में मरने वाला नहीं है, ये कैसे मरेगा, दिव्यास्त्र के माध्यम से है, जिस अस्त्र देवताओं और राक्षस उस अस्त्र के माध्यम में युद्ध कर प्रयोग करते हैं, तो इसके पास में क्या एक दिव्यास्त्र था, उनको सूर्यदेव ने दिए थे कर्ण को, तो वो दिव्यास्त्र को रखा था किसकी प्रति प्रयोग करने के लिए, अर्जुन के प्रति, लेकिन यार अर्जुन तो अभी बात के बात है, वो बोला नहीं ये दिव्यास्त्र अर्जुन के लिए रखा हूं, इसको अभी नहीं प्रयोग करूंगा, दुर्योधन कहा कि सारे सैनिक मेरा मर रहे हैं, सब कुछ मरने वाले हैं, यदि इसको किसी भी हालत से नहीं मारा जाएगा किसको, घटोत्कच को, ये सबको समाप्त कर देगा है, ये तो खा जा रहा है सबके सब धनु बस खा सबको तोड़ के फेंक देता है कोई कुछ है, और इतने जोर से आ हा हंस रहा है, उसे हंसी से ही स्वभावित हो जाते हैं लोग, और इसको समाप्त करो दिव्यास्त्र, फिर बाध्य होकर धिकार निकाला, बहुत कठोर शब्द कहने से दुर्योधन दिव्यास्त्र निकल, जो अर्जुन के लिए रखा था वही दिव्यास्त्र मानने के कारण दिव्यास्त्र के माध्यम से इसके बद हो गया, इसका घटोत्कच का, लेकिन होने के पर भी इन्होंने ऐसा ही गिरा जहां पर हजार कौरव सैन्य को क्या नीचे दबाते हुए सबको समाप्त करते हुए नीचे गिरा कि यदि भी मेरा शरीर जा रहा है तो कम से कम विपक्ष दल में इतने जितने भी सैनिक है इनसे भी सबको समाप्त करके जाऊंगा इनके ऊपर ही गिरा, सब चिल्लाते हुए भागते रहे लेकिन वो ऐसा ही आकाश से गिरा इनके ऊपर ही, उसके नीचे हजारों सैनिक दब गए हैं, स्वाती घोड़े सब दब गए, सबको समाप्त करते हुए गिरा। लेकिन पुतना ऐसा नहीं गिरा कि पुतना के अपने कंट्रोल में नहीं थे, वो कंट्रोल करने वाले तो कौन थे, कृष्ण। कृष्ण चाहते नहीं चाहते थे कि पुतना के शरीर गोकुल पे गोकुल गांव के ऊपर गिरे कि नंद भवन के ऊपर व उस गोकुल के जहाँ से ग्वाले बाल ग्वाल वाल सुन रहे ब्रजवासी जन रहे उनके गांव के ऊपर गिरेगा तो फिर वो उनके से हानि होगा है। चाहे पुतना भी प्लान करता हो कि सबको समाप्त करें, राक्षसी है तो उसके राक्षस बुद्धि होना ही जरूरी है, लेकिन पुतना चाहने पर भी वो ऐसा कर पाना संभव नहीं था क्योंकि ऊपर में भगवान बैठे हुए थे और वो गाइड कर रहे थे कहाँ गिरना, भगवान उसको लेकर ऐसे ही जगह में गिरने के लिए बाध्य कर दिए। वो था कंस की बगीचा है, कंस की बगीचा था, उसमें फल फूल के बागान था, कह के यहीं पर गिर जिसने तुझे भेजा और उसी के कारण पे समाप्त करो वो भेजा तो उसका फिर उसका कुछ है उसी का ही अनिष्ट होना चाहिए। जैसे भगवान के प्लान जो अल्टीमेटली वही कार्य करता है, जो मनुष्य व कोई भी प्राणी जीवात्मा अपने प्लान कुछ बनाता वो प्लान काम करने वाला नहीं है, जब तक भगवान ने सेंक्शन नहीं करते हैं तब तो कुछ नहीं हो पाता। भक्ति ठाकुर इसलिए कहते कि तब इच्छा बिनु कुछ तब इच्छा बिना कुछ करी ते न पारे, मिछे मायाबद्ध जीव आशा पासे फिरे। मायाबद्ध जीव कई प्रकार के प्लान करता है, बहुत कुछ योजना बनाता है, लेकिन जब तक इसके सेंक्शन किसके द्वारा नहीं होती है, भगवान इसके सेंक्शन नहीं करते हैं, वो कार्यकारी होने वाला नहीं है। उसके प्लान ऐसे प्लान में रह जाते कई जन्म तक ऐसे रहेगा है। इसलिए कि सबको सब व्यापी भी दायक उतना देहोपात सनातन को सभी कहते कि कृष्ण लीला स्तव में उतना की बारे में ये छह क्रश को व्याप्त करके गिर पड़ी है, क्योंकि भगवान ने इसको प्राण को शोषण कर लिए और भगवान ने इसको नियंत्रित कर रहे थे, उनके नियंत्रण से आकर तो कंस की बगीचे के ऊपर गिरी है, अन्यत्र नहीं गिरी। तो क्योंकि भगवान अल्टीमेटली सभी को अपने कंट्रोल में रखते हैं, उनकी तब जैसे भक्ति ठाकुर कहते तब ने तुम ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हारा इच्छा है विश्वेश जना संघा, आप ही समस्त ईश्वर के भी ईश्वर है, ऐसे संसार में कई ईश्वर है तो इनको कई लोगों को हम ईश्वर कहते, कई देवताओं को भी ईश्वर कहा जाता है, कोई शंकर जी को भी ईश्वर कहते हैं, कोई देवी की भी भगवान कहते हैं, कई कई प्रकार के हैं, लेकिन ये भक्ति ठाकुर कहते कि ये समस्त ईश्वर के भी आप ईश्वर हो है। महाराष्ट्र में भी ईश्वर कहते हैं किसको, गणेश को, गणेश को भी भगवान कहते हैं। ऐसा ही स्मार्त शास्त्र में पांचों को ईश्वर कहा गया है, वो लोग स्मार्त वाले कहते पांच भगवान है, कौन कौन, विष्णु है, शिव है, दुर्गा है और गणेश ने सूर्यदेव है, एक भगवान गणेश, ऐसे उनको पांच भगवान मानते हो, तो पांच भगवान में से तो लेकिन विष्णु भी एक भगवान का भगवान है, लेकिन असली भगवान कौन है, श्री कृष्ण, ये पांचों भगवान के परे ये सभी के स्रोत हैं। तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मते विष्णु करे न पावन, तब इच्छा मते शिव करे न संहार, तब इच्छा मते माया सृजे करागा, तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण, समृद्धि निपात दुख सुख संघटन। हे ब्रजेंद्र नंदन, यदि और कई ईश्वर संसार में है लेकिन आपको समस्त ईश्वर के भी ईश्वर है, हैं? आप सभी ईश्वर के भी ईश्वर है, कई ईश्वर और छोटे मोटे ईश्वर के सभी भगवान है, इनको भी भगवान कहने सभी भगवान कहते साधारण संसार में लोग, लेकिन जितने भी भगवान कहने वाले जितने भी ईश्वर है उनकी परे भी आप परमेश्वर हो, ये ईश्वर हो सकते लेकिन परमेश्वर कौन है, श्री कृष्ण। अल्टीमेटली सभी के कंट्रोलर वही है, ये सभी को अपने आयत में रखते हैं, इसलिए सभी उन्हीं के निर्देशन में कार्य करते हैं। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जारे जैसे नाचा ऐसे तैसे करे, वो अकेले ही भगवान है और सब उनके नौकर हैं। वो जैसे जिसको नचाना चाहते हैं वैसे ही नाचता है। वो सोचता है कि मैं अपने प्रकृति में सब करने कराने वाले कौन है, कृष्ण है। सब कुछ उनके निर्देशन में कार्यकारी होता है। तो उन्हीं की ही बहिरंगा शक्ति बा उन्हीं की ही माया शक्ति ही संपूर्ण जगत को परिचालना करती है। लेकिन उन्हीं की निर्देशना में, किनकी निर्देशना में, भगवान का ही निर्देशना में। चाहे कोई किसी शक्ति को साधन करके संसार में बहुत बड़े विद्वान पंडित बा कुछ भी बन जाए, बहुत शक्तिशाली कुछ सिद्धियां भी प्राप्त कर ले, लेकिन उस व्यक्ति का जब भगवान के साथ में टक्कर लग जाता तो कृष्ण के साथ में बा कृष्ण भक्त के साथ में, उसकी जय होने वाला नहीं है। चैतन्य महाप्रभु लीला में देखें, केशव काश्मीर बड़ा विद्वान था पंडित, दिग्विजय पंडित, इसको कोई परास्त नहीं कर सकता था। इसकी बागदेवी स्वयं, क्योंकि सरस्वती सिद्धि करके रखा था, सरस्वती जी के सिद्धि करके रखा था, और जो बोलना जो भी कोई आता था उसके सामने तो उसकी गले माने गले में बैठकर कौन बोलते थे, सरस्वती स्वयं बोलते थे। इसीलिए उसको पराजय करने वाला नहीं था। कितने बड़े विद्वान पंडितों के साथ चर्चा करके सबको परास्त करते करते आए नवद्वीप में, दिग्विजय पंडित, लेकिन छोटा सा बालक था ये तो, 12 साल के बालक था, कौन निमाय पंडित। निमाय पंडित के सामने जो आया तो उसका सारे ज्ञान समाप्त हो गए। वो बोलना चाहते थे कुछ निकलता नहीं था, तो जवाब नहीं था कि सरस्वती ने अपने आप चुप हो गए। देखिए कि ये मेरा स्वामी है, ये मेरे स्वामी के साथ मैं क्या तर्क करूंगी। वो शांत हो गए, जो बोलते थे गले में वो बोलना बंद कर, भगवान के सामने अन्य कोई बोलना नहीं बोलते, सो चुप हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत आसान से पराभव प्राप्त कर लिया, कौन केशव काश्मीर। बात में उसको सरस्वती ने समझाया, बड़ा दुखी होते कि यार तू किस लिए दुखी हो रहा है, तो जिससे परास्त हुआ वो ये साधारण व्यक्ति थोड़ी है, वो मेरा भी स्वामी है, हैं? तो उसके सामने मैं कैसे मेरा घमंड को दिखाऊं, अब मैं कैसे उनकी शक्ति हूं, उन्हीं के निर्देशन में कार्य करता हूं। भैया अध्यक्षण प्रकृति श्वेत असा चराचर, उनकी अध्यक्षता से ही मैं कार्य करती हूँ, उन्हीं की शक्ति हूँ, और उनके सामने मैं कैसे मैं अपना शक्ति दिखा सकता हूँ। चाहे रावण ने सिद्धि किया, किनकी, दुर्गा की, भक्त से वशीघ दुर्गा के भक्त है, लेकिन जो रामद्रोही हो गया उसको कोई रक्षा करने वाला है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है? जब तक ये शक्त, जैसे बाणासुर भी शंकर जी का भक्त था लेकिन भगवान के साथ द्रोही किया, चाहे शंकर जी स्वयं आ गए युद्ध करने के लिए, सारे परिवार वर्ग आ गए, शंकर जी भी आ गए, उनके दो बेटे भी आ गए, कार्तिक गणेश और दुर्गा भी, चंडी भी धारण कर भी आ गए, पूरे युद्ध में पूरा फैमिली, शिव फैमिली आ गए, परिवार बाणापुर के बाणासुर के पक्षे लेकर लड़ाई करने के लिए, चारों सेना के साथ में भगवान पधारे थे। तो क्या हुआ, तो भागे भगवान कहे कि चले जाओ चुपचाप, आप ऐसे बार बार आते हो तो समझ में नहीं आता। शंकर जी फिर बात में समझ में आए, बाणासुर को आप ये हजार हाथ आपको दिया था, वो आपके साथ ही लड़ाई करना चाहता था, आपने ही कहा था कि मूर्ख तू मेरे साथ लड़ाई करना चाहता, मैं ही वरदान दे, ने वरदान देकर तुझे बलियान बनाया, और तू मेरे साथ ही युद्ध करना चाहता है, तुम्हारे सारे भुज को काटने वाला के व्यक्ति है। खैर आप भूल गए उसी बात, तो आपकी वचन को रक्षा करने के लिए मैं आया हूं, इसके सारे भुजा को काटूंगा, दो ही भुजा इसको रखूंगा, जान से मारूंगा नहीं, क्योंकि बड़ी महाराज के पुत्र है, पुतना भी था, पुत्रा भी क्या हालत, पुत्रा किसकी बहन थी, सॉरी पुत्री थी, बड़ी महाराज की पुत्री थी, क्या नाम था, रत्नमाला है। तो इसलिए भगवान, लेकिन यहाँ पर अपने ये पूर्व जन्मों में थी, और रत्नमाला थी, बड़ी महाराज के साथ संपर्कित थे, इसलिए भगवान ने भी जो पुत्रा भी जो स्तनपान कराने आए तो भगवान ने अपना आँख बंद कर देखे इसके पूर्व जन्म क्या है। बोले अच्छा ये मेरा महान भक्त की पुत्री थी, किसकी, बोली की, और बोली के नहीं इसके उनकी दायत भी वो वंश में वो जुड़े हुए किसके साथ, प्रहलाद के साथ में, प्रहलाद की पुत्र विरोचन, विरोचन की पुत्र बोली, अरे बोली की पुत्री थी, बोली की पुत्री है, और इसको अच्छा गति देना चाहिए, मेरा भक्त की वंश है, वंश में आई है पूर्वजन्म में, भगवान देख लिए पूर्वजन्म में क्या था और कैसे इच्छा इसकी थी, सब देख लिए ना भगवान ने, इसी इच्छा प्रकट की थी कि बामन देव जी जा रहे थे बड़ी महाराज के यज्ञ स्थल में, और पहले इनको देख लिया, बावन देव बहुत सुंदर थे, कंदर का कोटि कमनिया विशेष अशोभन, भगवान के रूप छटा को कौन उपमा दे सकता है, भगवान के रूप उन्हीं के रूप के साथ ही केवल उन्हीं के साथ तुलना किया जा सकता है, भगवान के रूप को दूसरे के साथ तुलना करना संभव नहीं है। चाहे कभी लोग कोई कभी कभी तुलना की जाती है कमल के पुख्य भगवान के मुख कैसे हैं भगवान के हैं। साधारणतः संसार में सबसे सुंदर और श्रेष्ठ वस्तु कमल को माना जाता है, इसलिए कहते हैं कि पद्म मुख पद्म पाद पद्म पद्महस्त है और पद्म क्या है कमलाक्ष ऐसे ही पद्म फूल के साथ तुलना की जाती है। लेकिन वास्तव में भगवान के रूप को केवल भगवान के साथ ही तुलना किया जा सकता है, दूसरे किसी के साथ नहीं। इसलिए ये विरोचन की सॉरी बड़ी की पुत्री थी रत्नवाला है तो देखकर मोहित हो गई। और भगवान तो बामन रूप में थे ना, छोटा बावना रूप में थे और सोच रहे थे बच्चा है छोटा बच्चा है और मेरे कितनी नाना कितनी है प्यारा है वो, ऐसे इच्छा उनके पकड़ होगी मेरे गोद में लेकर इसको क्या करूं कन्फर्म कराऊं उसको। लेकिन तो बड़ा प्रसन्न थी, बड़े प्रेम से उसको देख रही थी, वात्सल्य भर गई थी हृदय में। लेकिन जब देखी कि अंत में अपने पिताजी के साथ इसका क्या डीलिंग हुआ, ये तो बावना बन के आया था लेकिन अंत में सारे मार्ग की ले गया सब कुछ, तीन छोटे छोटे पैर दिखाकर बाद में त्रिविक्रम रूप धारण करके सौर सर्वस्व हरण कर लिया बड़ी महाराज के। तो बोला अच्छा ये इतना कपटी है, मैं भी ऐसा ही कपटता करके इसको मार डाल दू, मार डालती जब ये मेरे गोद में आती है स्तनपान करने की जो इच्छा मेरी है ठीक है, लेकिन स्तन में क्या डाल दू, स्तन में जहर लेपन करके इसको पिला दी, इसको जान से मार डाल। तो भगवान देखे महाराज इसका इच्छा तो यही था है, ये वही है आ गया अभी बड़ी महाराज की पुत्री रत्नमाला और उसकी दोनों इच्छा था और मेरी भक्त के परिवार से आया तो उसकी इच्छा भी पूर्ण करना ये भी मेरा काम है, जोगो क्षम बहन करता हूँ। मेरे भक्त के परिवार के साथ संबंधित है, बड़ी महाराज के साथ संबंधित है, इसलिए इसकी मृत्यु ऐसा ही नहीं होना चाहिए, ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए। इसको मैं भेज दूंगा, कहाँ भेजूंगा, मेरे नित्य धाम में भेजूंगा। प्रहलाद की दायत है, उसकी प्रहलाद और प्रहलाद और बलि की वंश से आई है, बलि की पुत्री है। भगवान ने इसलिए बड़े दया मैंने उसकी मन में करुणा की भावना आगे तो कैसे इसको समाप्त मैंने, यदि इसकी दोनों इच्छा को मैं पूरे भी करूंगा, समस्त इच्छा जब तक पूर्ति नहीं होगा तो भगवत धाम कैसे जाएगा। प्रजा हाथी जदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिव आत्मतिष्ठ आत्मनतुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। जब तक स्थिति में नहीं आएगा समस्त प्रकार की कामनाओं मन से समाप्त नहीं हो जाएगा भगवत धाम कैसे जाएगा। संपूर्ण रूप में कामना, इसकी दो कामना पूर्व जन्म से ही है, स्तनपान कराएगी भगवान को मन इच्छा थी और साथ साथ जहर देकर पिलाएगी भगवान का, ये इच्छा तो इसका पूर्ण होगा नहीं तो भगवान का धाम कैसे जाएगा। ये दोनों इच्छा इसको पूर्ण करते हुए मैं इसको मेरे धाम में भेज दूंगा। इसलिए भगवान ने उतना को देखकर आंख बंद कर लिया और फिर उसकी स्तनपान भी उस स्तन को भी पान की इसकी इच्छा थी, लेकिन जहर भी तो लगाए थे तो भगवान ने इसको भी है जहर को पान करते हुए उसके प्राण को भी शोषण कर लिए, उसको बाध्य कर दिए जोर जोर से चिल्लाने में रोने में। पुतला ने वो जब देखे कि प्राण भगवान देखे कि प्राण यहीं पर छूट जाएगी तो बड़ा यहाँ पर बड़ा वो क्या सिचुएशन बड़ा उद्भट होगा, परेशान हो जाएगी सारे लोग, इतने बड़ा नंद भवन कहाँ ये इसके शरीर विस्तार हो जाएगा इधर। तो भगवान ने ऐसे ही व्यवस्था की कि उसको उठ के वो तुरंत शरीर ने भवन के नंद भवन से बाहर निकल कर फिर आकाश में उसको उड़ा के ले गए। ऐसे उड़ते जब वो स्टीयरिंग घुमा रहे थे वो उसको उड़ रहा था बस उसका शरीर घूमते घूमते जाकर देखे कि यहीं पर गिरना ठीक है। कहाँ पर? कंस की बगीचा, ये कंस का बगीचा है, बड़ा बुद्धिमान कंस इसको भेजा था और उसी का बगीचा का नष्ट होना चाहिए, उसे बगीचा के ऊपर गिरना चाहिए। भगवान के सही प्लान रहा था, प्लान था। जो राक्षस होते हैं भगवान को मानते नहीं है, लेकिन भगवान कहते कि जो माने व न माने सभी मेरे किंग दास है, केहू माने केहू ना माने सभी अमार दास, नहीं सभी अमार दास, जेहू ना माने अपना गुने से ही जाए नाश। ये संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं सभी मेरा ही अंश है, ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातना, ये सभी मेरी अंश है। और जो भक्त होते बात को स्वीकार करते हैं और भक्त इसको स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं तो स्वीकार करे या ना करो, अहं बीज पदो पिता, मैं सभी जीवात्माओं के पिता हूं, सभी मेरे संतान है। जेहू माने न जेहू ना माने अपना गुणे से ही जाए नाश, जो इस बात को स्वीकार नहीं करता अपना गुण के कारण, राक्षसी गुण के कारण उसकी विनाश होता है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो सभी को समभाव पर समभाव में देखता हूँ, समहं सर्वभूतेषु न दृष्टि न चमे प्रिय, कोई दो मारे मुझे कोई प्रिय व अप्रिय ऐसा नहीं, मैं सभी को समदर्शी होता हूँ। लेकिन फिर भी जे भजन्ते तुमांग भक्त्या, जो भक्त मेरी विशेष रूप में सेवापरायण है तो उनको भी मैं विशेष रूप में व्यवहार करता हूँ, यथामान प्रपद्यन्ते। और मेरा क्या दोष, लेकिन ये उतना ऐसे ही मेरे साथ व्यवहार की तो उसकी गति ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन उसको आकाश में लेकर, राक्षस की बुद्धि बहुत कम होता है, राक्षस अपने समझ नहीं पाते नहीं कुछ क्या कर रहे हैं। कंस को भी कुछ समझ में नहीं आता था वो किसको मार रहा था, देवकी के छह पुत्र को मारा, पोला पकड़ के एक एक करके पत्थर में पीट कर मार रहा था, लेकिन छह पुत्र थे कौन, पूर्व जन्म में उसी के ही पुत्र थे, पूर्व जन्म में वो काल में नहीं था। नारद जी ने आकर उसको बता भी दिए थे तुम्हारा पूर्व जन्म क्या था, तुम पूर्व जन्म में काल में नहीं था, तुमको भगवान विष्णु ने मारा था, इसको हकर उसको और द्रोह भगवान ने भी जागृत करा दिया। लेकिन जो काल्पनिक रूप में था कंस में था पूर्वजनों में, ये देवकी के जो छह पुत्र पहले वो मारा ये सारे उसी का ही पुत्र थे। किसका पुत्र थे, काल्पनिक के ही पुत्र। और इस जन्म में वही अपने पुत्रों को स्वयं अपने हाथ में लेकर एक एक करके पत्थर में पीट कर मार रहा था, फेंक कर पत्थर के ऊपर फेंक कर मार रहा था। यही विधाता की नीति है, हम जानते नहीं संसार में कौन किसका पूर्व जन्म में क्या स्थिति था और इस जन्म में। कभी कभी किस शत्रु ने भी पुत्र बनकर आता है इस जन्म में सताने के लिए, किसको उसके पिता के है, पूर्व जन्म में उसका शत्रु था, लोगों का शत्रु था, लेकिन इस जन्म में वो पुत्र बनकर आया किसी लिए, उसको बदला लेने के लिए, पिता पिछले जन्म का सारे हैं उसको सताने के लिए। लेकिन हम सोचते कि मेरा पुत्र है, ये धन जो हुआ ना पुत्र परिजन इतने की आछे बरती थी। गोविंद दास कहते कि ये क्या कौन किसका है संसार में, ये सब ऐसा ही है। प्रकृत में भागवत कहता कि हम दूसरे को देखते कि कौन शत्रु है नहीं, कौन डकैत है, धन को संचय करना इसको सेव करना चाहते हैं बैंक में डाल के इधर करके, लेकिन समझ नहीं आता कि असली शत्रु तो तुम्हारे साथ में ही है। कौन, जिनको तुम अपने मित्र बनाकर रखे, तुम्हारा कोई मित्र नहीं, असली मित्र केवल कौन, भगवान श्री कृष्ण, वही केवल सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञानतमान शांति नहीं तो एधन जौवन पुत्र परिजन इथे की आचे प्रती, इसमें क्या विश्वास है। ये जन जौवन पुत्र परिजन ये घर बार सब जो बने ये सारे माया के संसार है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। इथे की आचे प्रती कमल जल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति। संसार में देखना हमारे घर कोई मंदिर में फंक्शन हो रहा है, कोई विशेष उत्सव हो रहा है, आप जाओ किसके पास में दान लेने के, उसको आपको पता है कि आज तनख्वाह मिलने का डेट है, और आप जाओगे कि थोड़ा दे दो हमारा मंदिर बन रहा है कुछ पैसा दे दो तो दान दो, थोड़ा तुम्हारे लिए इतने सारा महीना भर कमाया था, इतने परिश्रम करके कमाया है, देखेंगे भी नहीं इतने दान, मुँह उसके पूरा कैसे विषम हो जाता है, पूरा ऐसे कटु बदन कर आपको चुपचाप आना पड़ेगा, देने वाला नहीं। लेकिन घर आते ही उसकी पत्नी को पता है कि इसको आज दरमा मिल के आया, आज लेके आया, जब सीधे मुस्कुराते हुए जाएगी और पॉकेट में डायरेक्ट हाथ डालकर सारे पूरा बंडल निकाल लेगी, हाँ तो उसके मुख में हंसी आ जाएगी, बोला क्या देखो ये कितनी मुझे प्यार करती है, मुझे देना भी नहीं पड़ा, अपने हाथ से निकल के लेगी। ये संसार है, लोग ऐसे ही होते समझ नहीं पाते संसार में क्या है, राक्षस विशेष रूप में राक्षस प्रकृति के लोग को समझ में नहीं आता, लेकिन जो भक्त है उनको सब समझ में आता है, भक्ति विनोद ठाकुर को सब समझ में आता था क्या है, मैं परिवार में संसार में हूँ लेकिन कौन क्या है इनको सारे पता ही था। और भगवान प्रार्थना करते थे कि मुझे ऐसे शत्रु पुत्र नहीं देना, मेरे को एक भक्त पुत्र दे दो, ये मुझे भक्त पुत्र भक्त एक पुत्र मुझे दिया। जगन्नाथ जी कैसे प्रार्थना करते हैं, जगन्नाथ पुरी में जो मजिस्ट्रेट थे प्रत्येक दिन जगन्नाथ जी प्रार्थना करते थे, मुझे ऐसा ही एक पुत्र दीजिए जो आपकी प्रचार करेगा, आपकी कीर्ति को सारे संसार में फैलाएगा, ऐसा एक पुत्र मुझे दीजिए प्रार्थना करते थे। इसलिए प्रार्थना को सुनकर जगन्नाथ इनको एक पुत्र दिए, कौन, डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पुत्र दिए। तो हम ऐसे पुत्र मांगते हैं भगवान को, हम कुछ मांगते हैं भगवान जिससे दे दिए बस, लेकिन ऐसे प्रार्थना भक्त जानते रहस्य संसार क्या है। तो कौन से ऐसा ही तो ऐसे राक्षस होने के कारण उसको सब पता नहीं था, पुतना को कुछ पता था। पुतना प्रकृत में इसके पूर्वजन्म बहुत अच्छा था कि भक्त के घर में जन्म लिया था, बोली महाराज की पुत्री के रूप में जन्म हुई थी है। लेकिन आपने कुकर्म के कारण, बुरे भावना मन में आने के कारण कि भगवान को विष दे कि जहर दे कि मार गया किसको, वामन देव को, सोचा कि स्तर में जहर देकर पिला के मार पाओ, सब छीन लिया मेरा पिताजी का है ना। हम जब किसी घर से जाएंगे कुछ ले लेते धन, ले लेते धन है सब, तो वो गाली देगा ना, गाली देता है तो वो जो बेचारा यदि कुछ भी नहीं कर पाएगा उसकी पत्नी बा उसके घर वाले बहुत गाली देंगे, तो कहाँ से आ गए, सब ले गया हमारे पिताजी छीन के ले गया। अब तो सर्वस्व ले गए वामन देव, इसका बड़ी महाराज को सर्वस्व हरण कर लेते, वैसे गुस्सा आए तो गाय, तो ऐसे ही गाली देने के कारण उसकी जन्म किस 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 घर में हुआ, राक्षसी के घर में और अत्यंत निम्न कोटि के राक्षस की चेतना उसकी पूरे बिगड़ गई, पुतना के रूप में, पुतना के रूप में जन्म ली। यदि ये पूर्व जन्म इसके अच्छा था, भक्त के घर में जन्म लेकर यदि ऐसे ही बुरा संग होगा, बुरे संग में आने से हमारा चेतना बुरे हो जाता है, नरकासुर भौमा किसका पुत्र था, बराहदेव और पुथी, माता पुथी और बराहदेव संयोग से उसकी जन्म हुआ था, भगवान के पुत्र है। प्रारंभ से उसकी ऐसा कुछ नहीं था, चेतना बड़ा शुद्ध था, बहुत अच्छा सत्संग करता था, साधु के व्यवहार ठीक करता था, भक्तों के संग में रहता था, लेकिन आस्ते आस्ते उसकी परमायु बहुत लंबा था, भगवान के पुत्र उसका मृत्यु भी नहीं, पृथ्वी का ही पुत्र पृथ्वी और धरा और बराह के पुत्र, लेकिन आस्ते आस्ते तृतीया जाकर जब मैंने सत्य तृतीय जब वापर आ गया तो फिर वो संग उसकी बिगाड़ गया, फिर वो ऐसे ही संग में आ गया, किसे जरासंध शिशुपाल दंत वक्र बाणासुर कंस इनके संग करने के कारण उसकी चेतना बिगड़ गई है। तो पर भगवान देखे कि यदि मेरे पुत्र है लेकिन ये फिर विभ्राट कर रहा संसार, तो भगवान ने क्षमा नहीं की, मारे जा करें इसको, बध किए इसको, मार दिया, तो चेतना के ऐसे बिगड़ जाते हैं। यदि पुतना पूर्वजन्म में बलि महाराज की दाय, बलि महाराज की पुत्री थी, इतने बड़े भक्त के परिवार से आए थे, प्रहलाद महाराज जैसे, बलि महाराज जैसे ऐसे ही परिवार में, फैमिली से, भक्त के परिवार में जन्म ली थी, लेकिन भगवान के पति कैसे भावना उसकी जागृत हुआ, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल भावना को पोषण करने के कारण ये जन्म में राक्षस के और बड़े बुरा चेतना के साथ राक्षस परिवार में जन्म लिया। लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु है, वो भूले नहीं, भगवान कभी बुरे को नहीं देखते, किसी प्राणी का अच्छा ही देखते, देखे क्या अच्छा, ये मेरे भक्त महान भक्त बलि की पुत्री है तो इसको तो सदगति मिलना चाहिए है? ये सोचते हुए यदि वो जहर पिलाने के लिए आए थे, भगवान ने ऐसे छल कर किसी प्राण को भी शोषण कर लिया, दूध पीने के छल में उसको प्राण को भी शोषण कर लिए, और इसको लेकर ऐसा ही गिराए स्थान में है, कहे कि जिसके संग से तेरा चेतना बिगड़ गई है, किसकी किसकी संग से, कंस की, कंस के निर्देशन में काम करने वाली, इसको लेकर ऐसे ही वही कंस के बगीचे के ऊपर गिरा है, और उसका सारे फल फूल का जितने भी पेड़ था सब चूर चूर होकर नीचे दब गए, उसके शरीर में शरीर के साथ सब नीचे दब गए। इसमें ब्रजवासी लोग ज्यादा दुखी नहीं हुए, लेकिन कन्या तो मिल गई बात में, लेकिन और देखिए कि उनका कोई अपना पर्सनल कोई गार्डन भड़ा नष्ट नहीं हुआ, ना बगीचा, ना कोई गाय भी इसमें किसी गोहत्या भी नहीं हुआ, कोई गाय का भी वध नहीं हुआ। यदि ये सब होता तो फिर बाप पुत्र नहीं जा पाता कहाँ, यदि गोहत्या करके वो होता तो गाय के वध करने का कारण बन जाती, तो फिर कैसे भगवान बन जाए, बाकी ब्रजवासी की वध कर, तो भगवान इसको जब अपने धाम में ले जाएंगे, इसलिए ऐसे ही व्यवस्था कर दी, कोई ऐसे सीरियस पाप ना करे, कोई गो हत्या या कोई ब्रजवासियों की हत्या इसके माध्यम से जैसे हो, ऐसे खुले मैदान से गार्डन में ही गिर गए हैं। और अगला श्लोक में बताया कि उसके दांत किस कैसे पूरे, और उसके हाथ पैर सब, मुख जो शरीर त्याग, मुख खुल गए, हाथ पैर सब अचारते गए। वहां पर आता है जो कहते हैं प्रकृति में पुतना जो मर गए, जो शरीर प्राण त्यागी, वो सत्वगुण से प्राण को त्यागने के कारण भगवत धाम गए, क्योंकि भगवान स्वयं बैठे हुए थे, सारे गुणों के जो संजय में जो कंट्रोलर है वो बैठे थे ऊपर, गुणातीत कौन, भगवान उसके शरीर के, वो शरीर में ऊपर बैठे हुए थे, इसे गुणों कैसे इसको स्पर्श करेंगे, अन्य गुण सत्य रजतम गुण उसको स्पर्श नहीं कर सकते, त्रिगुणातीत शुद्ध चेतना में शरीर को त्याग, तभी तो भगवत धाम पहुंचे, भगवान उसके साथ में ही थे, कितने भाग्यवान है, हम प्रार्थना करते हैं, हरिदास ठाकुर प्रार्थना किए कि हे प्रभु मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए हैं कि हृदय धरिमु तव कमल चरण मुखे उच्चारिमु कृष्ण चैतन्य नाम नयन हेरिबु तव चांद वदन यही मत इच्छा मर छाड़ी मु पुराण, मेरा यही इच्छा है प्रभु आपके चरण कमल को हृदय में धारण करते हुए आपकी मुखारविंद को निहारते हुए कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करते हुए जैसे मेरा शरीर छूट जाए, यही अंतिम इच्छा होता है। पुतना से कुछ प्रार्थना भी नहीं किया लेकिन भगवान ने ऐसे ही इच्छा दे दी, इसके देश की भाग्य दे दी है, उसका चरण कमल उसके बख्य, भगवान के चरण कमल उसके बख्य में ही थी, किसका पुतना की। अब पुतना रखे से देखी भगवान को साक्षात मुखराज मुखारविंद और देख रहे, मुखारविंद को निहार रही थी, उसको स्तन पार कर रहे थे, मुख को देख रहे थे, मुखारविंद को निहारते हुए छोड़ दो है, तो उसको अपने आप ऐसे भाग्य मिल गया। भगवान ने कहते कितने भाग्य, भगवान के मने क्या साथ में भगवान की क्या संजोग से रहते हुए भगवान के मुखारविंद को निहारते हुए भगवान के रूपा वही शरीर त्याग, तो उसकी गति कैसे भगवान धाम नहीं होगा निश्चित रूप में। जो राक्षस जो युद्ध करते भगवान को देखते हुए शरीर त्याग तो इनको भी गति होता है, मुक्ति प्राप्त कर लिया। पुतना भी तो ऐसे ही थे है? बड़े भाग्यवान है, लेकिन ये अनुकूल भाव नहीं था, ये प्रतिकूल भाव था, फिर भी भगवान ने कृपा करके क्योंकि बड़ी महाराज के साथ उसके संपर्क थे, पूर्व जन्मों की इतिहास को देखते हुए भगवान ने ऐसी को कि कौन सा गति दिए, धात्री लेभे धात्री गति है उचितम कि अन्य उचित है, ये उचित है भगवान सुधा यही उचित है कि धात्री गति मिलना चाहिए क्योंकि मेरा भक्त बलि का ही पुत्री है। भगवान ने बहुत विचार करके बोले चलो इसका पूर्व जन्म का इच्छा भी दोनों पूर्ण कर दिया, मुझे स्तनपान कराना चाहते थे और विष भी देकर पिलाना चाहती थी, ये सब चलो ये सब सामान्य कारण, लेकिन इसकी जो प्रकृति में जो ये बड़ी महाराज के साथ इसका संपर्क है, भगवान अपने भक्तों के संपर्क में जितनी जो कुछ कोई रहता है सभी का जो क्षम को पूर्ण करते हैं, केवल भक्त के नहीं भक्तों की साथ में जो संबंधित है जिसके रिलेशन है ये सभी को भगवान उद्धार कर देते हैं। इसलिए पुतना इस प्रकार भगवान ने लाकर कंस की बगीचा के ऊपर गिराए और 12 माइल तक उसके शरीर फैल गए और संपूर्ण उसके जो बगीचा भी ऐसा ही था, 12 माइल तक ऐसा ही फैला हुआ जो जमीन था, जमीन के ऊपर फूल फल की बागान बनाकर कंस रखा था, तो उसी का ऊपर भगवान ने इसको लाकर गिरा दिए और उसके सारे तो बगीचे सभी वृक्ष चूर चूर हो गए पुतना के शरीर के बोझा से, सब नीचे दब गए। और आगे क्या होगा फिर काल श्लोक में आप लोग श्रवण करोगे। कोई प्रश्न है? प्रसंग कई दिन से सुन रहे हैं ऐसे पुतना के प्रसंग तो बस एक सप्ताह में समाप्त हो, लेकिन ये तो एक एक श्लोक हम क्या करें तो फिर एक एक श्लोक का तो लंबा चलेगा और हर श्लोक में तो ऊपर भी ज्यादा तात्पर्य भी नहीं है, दो तीन चार लाइन तात्पर्य। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं। पुतना वहीं पर थी, मैंने भगवान ही जो इसको मैंने क्या भगवान ने जब इसको स्तनपान करके जो चिल्लाई तो पुतना तो वहीं पर थे भगवान थे स्तनपान कर जो पुतना स्तनपान करने के लिए, लेकिन उठाकर ले गई फिर ऐसा बहुत दूर गिरा है वहाँ पर, तो प्राय उसके प्राण छोड़ गए थे लेकिन भगवान ने इसको ऊपर उठाकर ले जा रहे थे, उसका शरीर को ले जा रहे थे कि जानते यहाँ पर गिराने नहीं थे, भगवान ने इसको उठाकर लेकर वहाँ गिराए कंस के गार्डन के ऊपर गिराए। वो दिखाते जो तो पंडाल कुछ बहुत कुछ दिखाते हैं, कभी भी कुछ बता देगा। हमारा मंदिर में है एक दिन बैठा तब तो एक पंडा ने बता रहा था कि दूसरे जो पब्लिक मैं बैठकर जब कर रहा था तो एक पंडा वहाँ पर बाहर का था, तो ग्रुप लेकर पब्लिक आए अच्छे लोगों को सब लेके आया था, अच्छे उनमें बड़ा बड़े बड़े लोग लगते थे कि अच्छा स्टॉल, तो उन कहता था कि ये जो तमाड़ का ये जो बुख्य देख रहे हो, बोले कि कौन सा नहीं ये बुख्य बहुत मैंने विशेष बुख्य है, इस बुख्य में हर अमावस्या के नहीं, हर हर अमावस्या में दो रुद्राक्ष एक मुख्य रुद्राक्ष गिरते हैं बोलता है मुख्य दो एक मुख्य रुद्राक्ष गिरते हैं और वो रुद्राक्ष को जो प्राप्त कर लेता है उसकी सभी सिद्धि प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हर पूर्णिमा के रात में ये जो श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर देखते हो ये झूला ये साक्षात आकर यहाँ पर झूलते हैं तो उन क्या कैसे बोल रहा था मैं तो बैठ के सुन क्या तो पंडित लोग कुछ भी बोलते हैं पंडित लोग उसको बोलने का कोई कुछ ही बोलेंगे आप कोई आप क्या जानते बस कुछ भी बोल देंगे और आप बोलोगे तो आपको झगड़ा शुरू कर देंगे। उधर जमुना के किनारे सब जगह दिखाएंगे ये एक भगवान ने यहाँ पर क्या वस्त्र हिरण गला यहीं पर हुआ था आप जब कुछ बोलोगे फिर चिल्लाएंगे। साखी गोपाल में जाओगे तो पंडित वहां बताएंगे यहीं पर आकर वो छोटा विप्र बड़ा विप्र यहीं पर आए थे यहीं पर साखी दिया था भगवान था कहाँ पर साखी गोपाल कांचीपुरम में थे तो कांचीपुरम से ब्राह्मण आए थे ये यहाँ साखी गोपाल से नहीं गए थे कांचीपुरम के विप्र दोनों थे तो छोटा विप्र बड़ा विप्र कांचीपुरम से आए थे वृंदावन इसलिए वो साखी गोपाल कांचीपुरम गए थे साखीधन के यहाँ साखी गोपाल में थोड़ी आए थे साखीधन के नाम साखी गोपाल है पूरी राजा पुरुषोत्तम देव कांची विजय जब किए हैं और गणेश जी साथ कांची के जो अधिष्ठाता जो राजा थे उनकी जो देवता जो इष्ट थे गणेश गणेश को भगवान रूप में पूजा करते थे। सत्य था कि युद्ध में जो परास्त होगा अपना इष्ट को उठाकर जो जय होगा जय करेगा पराजय होने वाला का इष्ट को उठा के ले जाएगा तो युद्ध में कांचीराज परास्त हो गए तो ये पूरी गजपति राजा उनकी इष्ट को गणेश को उठाकर लाकर जगन्नाथ जी के पीछे रखते हैं। जगन्नाथ मंदिर जाओगे तो जगन्नाथ के पीछे हैं गणेश विशाल गणेश मूर्ति लिखा गया कांची गणेश कांची विजय करके उनको उठा के ले आए वहां से जगन्नाथ जी हैं ब्रह्म ने जगन्नाथ अष्टक में इसलिए पहला श्लोक कहते हैं कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो उदाभिनादि वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पद ये सभी के द्वारा वर्चित होने वाले कौन जगन्नाथ ब्रह्मा शंभु अमरपति जमराज ने इंद्र अमरपति सभी देवताओं के राजा अमरपति गणेश गणेशार्चित पद ये सभी के द्वारा जो पूजा प्राप्त करते वो है जगन्नाथ जो सभी इनको पूजन करते हैं स्तुति करते हैं हाँ तो क्या बोल रहा था हाँ इसलिए पंडित कुछ भी बोलते रहेंगे तो कांचीपुरम साखी दिया था कांचीपुरम में हुआ था बाद में कांची विजय करके पूरी राजा उनको उठा के ले आए जय गणेश बुलाए उनके साथ साखी गोपाल भी हुई थे तो साखी गोपाल को उठा के वो गोपाल जी को भी उठा के ले आए थे उठा के लाकर पहले इनको कुछ दिन पूरे जगन्नाथ उनसे उसमें उड़ीसा राजा की राजधानी कटक में रहता था तो कटक में लाकर रखे रानी गया देखने के लिए विग्रहों को दिख रहा गोपाल को दिखकर बड़ा मोहित हो गई बोली अरे अपने नाक में बहुत सुंदर क्या मुक्ता वो धारण की थी बहुत कॉस्टली मुक्ता कहते कि भगवान को देख रहे कोई छिद्र होता तो ये मुक्ता मैं भी भगवान के नाक में यदि मुक्ता देंगे तो बहुत सुंदर देखे और कुछ गहना देने की उसकी मन में इच्छा हुई भगवान ऐसे ठीक नहीं लग रही हमें अब तो आते तो रात्रि में भगवान ने सपने में आ गए कहे कि अरे तुमने तो बात चल रही मुझे मैंने पुत्र के रूप में समझा तुम देखा नहीं मेरे जो सुधा माया ने भी बचपन में मेरी यहाँ पर छिद्र बनाई थी ध्यान से देखना दूसरे दिन मेरा आनी तो बड़ा चुकी तो घर जाएगी देखेगी तो सबको सब गोपाल जी के यहाँ पर छिद्र है फिर आपने नाक से उन मुक्ता को उतार कर भगवान को पहना दी तो गोपाल जी वहाँ रहते फिर उस दिन वहाँ से कुछ दिन कुछ दिन के बाद राजा उनको लाकर जगन्नाथ मंदिर के अंदर रखी जगन्नाथ जी के साथ में बोले कि हैं बाद में वो राजधानी ट्रांसफर हो गया पूरे कटक से पूरी के पूरी की फिर ट्रांसफर कर लिए बोले कि इतना दूर फिर गोपाल जी को कहा गोपाल जी बोले जगन्नाथ जी के साथ रहते क्योंकि डेली गोपाल जी को भी दर्शन करना चाहते थे को कटक में रखेंगे तो इतना दूर कौन जाए फिर बोला कि जगन्नाथ जी के साथ जगन्नाथ जी के साथ गोपाल रह गए तब झगड़ा शुरू हो गया जितने प्रकार के मिल्क के आइटम सब खा गई हैं जितने प्रकार के जो छेना कोड़ है छेना के मिल्क के आइटम जितने भी हैं गोपाल सारे जगन्नाथ का हाथ पकड़ के सब खा लेते राइस डाल सब्जी उनके लिए छोड़ दिया है तो एक ही लेकिन ये एक लीला में झगड़ा तो जगन्नाथ जी ने बोले कि राजा को स्वप्न तुम्हें किसको लागे मेरे साथ छोड़ दिया इधर ये सब खा लेता मेरे सब जो कि जो मिठाई है वो सुनने वाला है नहीं मेरे हाथ पकड़े सब खा लेता है मुझे दाल राइस देने के और खाना पड़ता है इसको हटाओ यहाँ से इसको अलग रख फिर राजा ने फिर उनको अलग जगह रख दिए कहाँ 20 किलोमीटर दूर में साखी गोपाल आज जहाँ पर है वहीं पर मंदिर दूसरा मनाकर फिर गोपाल जी को वहाँ रख दिए। इसलिए गोपाल जी राइस वाइस खाते नहीं तो उनको राइस भोग नहीं लगता, तो केवल दूध मिल्क का आइटम जो है सब बांटता मिठाई से उससे भोग लगाते। तो जैसे पंडित लोग कुछ भी बोलते रहेंगे, कोई कुछ भी कुछ भी बोलते, तो पंडित की बात क्या, हमें शास्त्र देखना चाहिए, हम शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र के आधार पर चीज़ों को समझना चाहिए, नहीं तो पंडों की बात सुनेंगे तो फिर हम स्वयं भ्रमित हो जाएंगे। वो तो धंधा बना के रखे अपने पेट पोषने के लिए, बस कैसे ही पैसा कलेक्शन करना, झूठ मूठ कैसे बोले बस पैसा लेना कलेक्शन करना है। पंडा की बात को हम सोर्स नहीं समझ सकते, प्रामाणिक शास्त्र नहीं मान सकते। प्रामाणिक शास्त्र इसलिए दी गई है श्रीमद् भागवतम और साधु, साधु शास्त्र गुरु, बस तीन आध्यात्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ा सकते। ठीक है, और कोई प्रश्न है? नरकासुर बात में इनको संग प्राप्त करके, बुरा राक्षस के संग प्राप्त करके उसका मति भी राक्षस जैसे हो गया, तो फिर वो उत्पात मचाने लगा, लोगों को सताने लगा, इनके समय कई प्रकार की दुष्कर्म करने लगा रहा, तो इसलिए भगवान ने इसको भी बध किया। किसको? नरकासुर को, सत्य भावों के साथ में लेकर जाकर उसको मारे, इसको बध किए, अपने पुत्र होने पर भी इसको बध किए। भगवान के मुख्य कार्य है कि संतों को आश्वासन देना है, धर्म संस्था अपना अर्थ है, तो इसलिए इस मार्ग में जो भी आएगा भगवान के पुत्र तो सब है, वो तो केवल एक ही अभिनय में था कि पुत्र सभी, आप सभी भगवान के पुत्र है। क्रिश्चियन लोग सोचते हैं कि जेसस एकमात्र भगवान के पुत्र है, ऐसा नहीं। भगवान में कि आप सब ने प्रभुपाद जी जाकर समझाए कि आप सभी भगवान के पुत्र हो, एकला जेसस में हम मना नहीं करें, वो भी पुत्र है, लेकिन आप प्रत्येक, भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा मेरी पुत्र है, हैं मम एवांश जीवलो के जीवभूत स्नात, सभी भगवान के अंश है। नरकासुर जो राक्षस मति होगा तो बद्ध की योग्य हो जाएगा। भगवान किसी को माफ नहीं करते, इसको सबको सब, आप लास्ट में देखिए कि जादवों को समाप्त तो नहीं करके जाऊंगा, ये बात में फिर किसी को मानेंगे नहीं है। ये ब्राह्मण के साथ ये लोग ने उपहास करने लगे, सब तरह से आते थे भगवान को मिलने के लिए, और वो इसका पेट में कपड़ा देकर, किसका पेट में, सांब के पेट में ऐसे कपड़ा देकर इसको वो एक गर्भवती स्त्री जैसे सजा कर मजाक करने लगी जाएगी ब्राह्मण के साथ। इवन किसी को डंकियार थे, हम भगवान के पुत्र, भगवान के परिवार से हैं, द्वारकाधीश के परिवार के, हमको क्या बड़ा घमंड हो गया ना, कहें भाई देखो ये क्या, ये कौन सा बच्चा जन्म देने वाली है, मजाक करने लगे ब्राह्मणों के साथ में, ऋषियों के साथ। तो उनके साथ में भी दुर्वासा थे, दुर्वासा तो वहां क्रोधी थे, कहें कि अच्छा समझ ये मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, उपहास कर रहे, देखेंगे इतनी घमंड इनको हो गया कि देवर्षियों के साथ में नहीं, जो ब्रह्मर्षियों के साथ भी ये मजाक करना शुरू कर दिया। बोले ठीक है, जो भी इसका पेट से निकलेगा वही तुम्हारा वंश का ध्वंस करने कारण बने, ऐसे कभी कभी होता है। भगवान देखिए ये लोग इसलिए सबको समाप्त करके गए, घमंड आ जाता है संग दोष होने से, विशेष ऐश्वर्य बढ़ने से, इसलिए कुंती महारण ने अपने स्तुति में कहा है सब मदह मद नहीं इदम आना मदह गुमान है जन्म शर्जय श्रुत सीधे है। जन्म अच्छे घर में जन्म, बड़ा धनाढ्य परिवार जन्म लेने से ऐश्वर्य ऐश्वर्य सुत सुंदर नहीं, सुत का था धी शक्ति अधिक होने से, बड़े स्कॉलर बनने से, पंडित बनने से, और श्री सौंदर्य बहुत सुंदर शरीर होने से, ये सब व्यक्ति के मन में अहंकार को बढ़ाता है। ये दमाना मद हो क्योंकि भगवान अकिंचन गोचर है। ठीक है, उतना की नहीं, पुत्रा भी इस प्रकार पूर्वजनों में बड़ी की महाराज की पुत्री थी, तो उसकी भी ऐसा ही घमंड आ गया, उसको जज विष देकर मार डाला। तो भगवान ने उनके दोनों इच्छा पूर्ण करते हुए भी फिर इनको अपने लोक में भेज दिए, और किस प्रकार पद दिए, धात्री गति लेभे धात्री गति। तो बड़ा चर्चा उसके प्रकृति में, इसको ऐसा ही धाई का पद नहीं मिला, जैसे मैंने प्रकृति माँ जसोदा बा जो अनुकूल भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसा पद उसको नहीं मिला इनको उतना। तो बात में उसके चर्चा की गई। हरे कृष्णा, तंत्रा श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, राधा गिरिधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, नंदी देवी
महाराज की जय। आप सबको बताया कि महाराज जी एक दिन का ये काफी महात्म्य फिर से सत्र दे रहे हैं, तो समय 3:30 बजे कृपा करके आ जाइए और शाम होगा
आज
दूसरा दिन है। इस दूसरा दिन में कल महात्म्य हुआ, आज विधि विधान कार्तिक में कैसे पालन करना चाहिए विधि बताएंगे, तो स्थान होगा भक्ति विधान का स्वामी हॉल ऑडिटोरियम, तो स्थान ध्यान में रखिए मंदिर नहीं मंदिर भक्ति विधान स्वामी हॉल, तो ये भक्ति विधान का स्वामी हॉल है, भक्ति विधान हॉस्पिटल है, आप भक्ति
हरे कृष्ण।